ये तावीज़, झाड़ फूंक और ये चीज़ें बांध लेना, इस तरह की जो एक पूरी हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत ही शायो ज़ाय चीज़ें नज़र आती हैं, बिलखुसूस बरसग़ीर में, तो दीन में अगर कोई आप फरमाते हैं कोई चीज़ आपने उसको दीनी ताल्लुक पैदा करना है तो उसका इस्बाती हुक्म बताना पड़ेगा। ये सब चीज़ें क्या साथ में आप ने कभी तावीज़, ये दम दुरूद, इस तरह की चीज़ें कभी की हैं?
ये बात तो रवायतों में मालूम होती है कि रिसालत में आप ने अल्लाह ताला ने जो दुआएं सिखाई हैं वो किसी मौके के ऊपर पड़ी हाथों पर फूंका और अपने जिस्म पर हाथ फेर लिए, इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है। लेकिन ये जो तावीज़ों का कारखाना हमारे यहाँ लगा दिया गया है और जिस तरीके से कारोबार बन गया है, ये तो इजाद बंदा है। दीन में यही बताया गया है कि आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, यानी जो दीन की बात है। तदबीरें दुनिया से मुतल्लिक हैं, आप इलाज दरियाफ़्त करते हैं, ये होम्योपैथी है, एलोपैथी है, इसी तरह के बहुत से नफसी उलूम में भी इलाज हैं जिनको लोग बयान करते हैं कि हमारे तजुर्बात में आए हैं। उन पर तहकीक होनी चाहिए, उनमें जो चीज़ आपके नज़दीक काबिले कबूल हो उसको इख्तियार कर लें। वो आपको हिंदुओं में भी मिलेंगे, वो आपको मसीहियों में भी मिलेंगे, वो बुद्धों में भी मिलेंगे, वो हम मुसलमानों के यहाँ भी मिलेंगे। इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीन में तो बस इतना ही है कि जिस वक्त आपको कोई मुसीबत है, तकलीफ़ है, आप तदबीर करें, जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसकी रोशनी में तदबीर करें और उसके साथ अल्लाह से दुआ करें। और हमें मुश्किलात में भी ये हिदायत की गई है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, यानी सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ सूरत हल का मुकाबला किया जाए और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगी जाए। दीन असलन यही बताने के लिए आया है। इसके बाद आपकी तदाबीर का दायरा शुरू होता है और तदाबीर के दायरे में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि अब कौन बता सकता है कि जी फलां जड़ी बूटी में या फलां मादनी चीज़ में ये बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। ये जो आपने अभी वैक्सीन ईजाद की है तो इसके बारे में कौन बता सकता है? तजुर्बात ही से मालूम होता है ना। तो इसी तरह के कुछ तजुर्बात लोगों के पास नफसी चीज़ों के बारे में भी है, वो भी उलूम की एक किस्म है और कुरान मजीद में भी उसका ज़िक्र हुआ है। तो उन उलूम को दुनियावी उलूम ही की तरह पेश करना चाहिए, जिस तरह सेकुलर उलूम हम पेश करते हैं। आप होम्योपैथी पर गुफ्तगू करते हैं, एलोपैथी पर गुफ्तगू करते हैं, सर्जरी पर गुफ्तगू करते हैं, तशख़ीस अमराज के इल्म पर गुफ्तगू करते हैं, उसी तरीके से उन उलूम को भी मौजू बनाना चाहिए। इस वक्त हम उनमें एहतियात का इसलिए लोगों को मशवरा देते हैं कि वो उस तरह इल्म नहीं बने या साइंस नहीं बने, और सीना बसीना कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, लोगों के तजुर्बात हैं उनको बयान करते हैं। जब उनको तहकीक का मौजू बनाया जाएगा तो हो सकता है कि वो भी इसी तरीके से इलाज मुआलजे की साइंटिफिक सूरतें बन जाएँ। बन जाएंगी तो उनसे भी फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। इस वक्त भी अगर कोई आदमी फ़ायदा उठाना चाहे तो आप नाजायज़ नहीं कह सकते, बस सिर्फ इतनी तंबीह कर देनी चाहिए कि उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिर्क किया जाए। यही बात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जब ये पूछा गया कि यहाँ बाज़ यहूद हैं और वो इस तरीके से कोई दम कर देते हैं या किसी मौके पर किसी सरदर्दी में सही कुछ इस तरह की चीज़ कर देते हैं, तो आपने फरमाया कि फ़ायदा उठाओ लेकिन यह है कि अगर कोई शिर्क की बात हो तो उससे बचने की सही करो। तो ये तरीका हमें सिखाया गया कि दुनिया में जो तजुर्बाती उलूम हैं वो खा नफसी हों खा वो मादी हों, उनके बारे में तहकीक का तरीका इख्तियार करना चाहिए। इत्मीनान हो जाए तो आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन दीन के लिहाज से ये देख लीजिए कि उसमें कोई शिर्क नहीं आना चाहिए।
ठीक, लेकिन आपसे ये बयान किया जाता है कि आपकी रोज़ी में कुशादगी के लिए, सफ़र में आसानी के लिए, रिश्ता अच्छा हो जाए तो कुरान मजीद की ये सूरत इतनी दफ़ा पढ़ ली जाए या अल्लाह मियाँ का ये नाम इस तरतीब से पढ़ लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें तो अब आप फरमाएंगे कि जी अगर तजुर्बात की रोशनी में किसी को फ़ायदा भी हो रहा है लेकिन ये तो दीन के कंटेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक मकसद के लिए, उसका हमारे पास सबूत कहाँ से?
जी हाँ, दीन का कंटेंट इस्तेमाल करें या दुनिया में खुदा ने जो अपनी नेमतें दी हैं उनको इस्तेमाल करें। यहाँ किसी चीज़ को दीन अगर बना के आप पेश करेंगे तो फिर हम उस पर तनकीद करेंगे, अदरवाइज़ ये तजुर्बात ही की नौीयत की चीज़ है।
और ये आपके इल्म के मुताबिक क्या इस तरह की कोई चीज़ कभी तजुर्बे के लिहाज से साबित भी हुई कि इतनी दफ़ा सूरतों के नाम पढ़ लें नौकरी में?
देखिए, बात ये जिसको आप तजुर्बा कहते हैं ना, तजुर्बा एक तो साइंसी तजुर्बा होता है, उसका मतलब यह है कि वो हर वक्त दोहराया जा सकता है। तो इस तरह की कोई चीज़ तो मेरे इल्म में नहीं आई कि जो हर वक्त दोहराई जा सके। लेबॉरेटरी में आप पानी को दो हिस्सों में तकसीम करके दिखा दें और बता दें कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये चीज़ तो नहीं है। लेकिन मुझे भी ज़िंदगी में बाद ऐसे तजुर्बात पेश आए हैं कि जिसमें हैरत अंगेज़ तरीके से फ़ायदा हो गया। ऐसे ही और बहुत से लोग भी उनको बयान करते हैं। ये इसी तरह है कि जैसे आप देहात में होते हैं तो बड़ी बूढ़ियाँ कह देती हैं कि ये देखिए एक टोटका है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं बुज़ुर्गों में जो बताते रहते हैं, फ़ायदा हो जाता है। तो ये तजुर्बा असल में साइंसी तजुर्बा नहीं बन जाता इसके नतीजे में। اس کو سائنسی تجربے میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو علم بنایا جائے، علم کے طریقے پر اس کی تحصیل کی جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بات اس طرح کہہ سکیں جس طرح کہ آپ نے پوچھا ہے اور میں اس کا جواب دوں. ورنہ یہ ہے کہ آدمی کے یہ ذاتی احساسات ہوتے ہیں، ذاتی تجربات ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کوئی الوژن بھی ہو سکتا ہے، معلوم ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہو، کوئی اور باعث بن گیا ہو، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تجربات مجھے بھی ہوئے ہیں، میں نے بہت سکا لوگوں کو بھی سنا ہے کہ ان کو بھی بہت سے تجربات ہوتے ہیں، اور زندگی میں یہ تجربات میں نے سامنے ہوتے بھی دیکھے ہیں. خود میرے اپنے والد گرامی ان چیزوں سے بہت اشتغال رکھتے تھے، تو میں روز اس طرح کی بعض چیزیں دیکھتا تھا، لیکن یہ کہ وہ سائنسی عمل سے گزر گئے ہیں، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تجربہ کیسے ہوتا ہے، اس کو دہرایا جا سکتا ہے، یہ بالکل کوئی سائنسی تجربہ بن گیا ہے. کیا دہرا کے آپ نے بار بار اس کو دیکھ لیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ آپ نے ایک دوائی ایجاد کی ہے، تو آپ پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ والنٹیئر کریں، ہم اس کو آزمائیں گے. یہی کرتے ہیں نا، ابھی ویکسین کے بارے میں یہی ہوا ہے جی. اس سے گزارنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا اثرات ہوئے، کیا واقعتاً اثر ہوا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ 90%، یہ 80%، یہ 60% کارگر ہے. تو آپ دیکھیے 90%، 60% کارگر ہونے پر بھی آپ اس دوا کو مان رہے ہیں ایمرجنسی میں، تو وہاں پر بھی اسی طرح کے تجربات کریں. تو ان کو چونکہ ہم علم کے طور پر زیر بحث لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ سائنس بھی نہیں بنتے. انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے. میرے نزدیک وہی طریقہ صحیح ہے جو رسول اللہ نے اختیار کیا، کہ آپ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں یہ دیکھ لیا کریں کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے. یہ تجرباتی علوم ہیں، یہ قرآن سے متعلق ہوں تب بھی تجرباتی ہیں، گیتا سے متعلق ہوں تب بھی تجرباتی ہیں، تورات سے متعلق ہوں تب بھی تجرباتی ہیں، یہ مادے سے متعلق ہوں، جمادات سے متعلق ہوں، نباتات سے متعلق ہوں، سب تجرباتی علوم ہیں. ان کا دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں.